और अगर इत्तेफाकन कोई इससे टच हो जाता तो वो और छूने वाला दोनों को बहुत तेज बुखार हो जाता। वो जंगल में यही शोर मचाता फिरता था कि मुझे कोई ना छुए, मुझे कोई ना छुए, और वो इसी तरह मौत तक वहशियों और दरिंदों के दरमियान जिंदगी गुजारता रहा। इससे फरमाया कि ये तो तेरी दुनिया की सजा है और आखिरत की सजा इसके अलावा है। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको फिरौन के बारे में बताया था कि फिरौन के घर खोने के साथ जहां एक चैप्टर क्लोज हुआ था वहीं से एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था। आज हम उसी पर बात करेंगे। हमने सुना था कि फिरौन के वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक घोड़ी पर सवार होकर आए थे जिसके पीछे फिरौन का घोड़ा दरिया नील में दाखिल हो गया था। नाज़रीन, उस वक्त वहाँ जितने भी लोग थे बनी इसराइल के या किबती, उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि ये कौन है, अचानक कहाँ से आ गए, लेकिन सिवाय एक बनी इसराइल के, वो जानता था कि ये सामने आने वाले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। मैं यहाँ पर हज़रत मूसा या हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इनके अलावा कोई और था। कौन था ये इंसान जो हज़रत जिब्रील को पहचानता था? ये है हमारी आज की वीडियो का तारीखी दुश्मन, हिस्टोरिकल एनिमी, सामरी। सामरी ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो ये आपको पहचान गया और इसने फिर आप अलैहिस्सलाम की घोड़ी के जहाँ पाँव पड़े थे वहाँ से उसने थोड़ी सी मिट्टी उठा ली। अब ये इसने मिट्टी क्यों उठाई और उसने उसका क्या किया, ये जानने से पहले सामरी के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। सामरी ये बनी इसराइल में से एक गुमराह आदमी था। ये जायज़ निकाह के नतीजे में पैदा होने वाली औलाद नहीं था, इसलिए इसकी माँ ने लोगों में रसवाई और बदनामी के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ के एक गार में छोड़ दिया था, जिसके बाद इसकी परवरिश हज़रत जिब्रील ने फरमाई थी। हज़रत जिब्रील इसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था, इसलिए ये हज़रत जिब्रील को पहचानता था। इसने किस तरह बनी इसराइल को गुमराह किया और कितना बड़ा गुनाह करवाया, इसकी डिटेल यूँ है कि फिरौन ने दरिया नील में गर्क होने के बाद बनी इसराइल का गुजर एक ऐसी कौम के पास से हुआ जो अपने झूठे माबूदों के मुजस्मे यानी बुत बनाकर उनके आगे जम कर बैठे हुए थे और उनकी इबादत कर रहे थे। ये मुजस्मे गाय की शक्ल में थे, काऊ की शक्ल में थे। यहाँ से बनी इसराइल के दिल में बछड़ा पूजने का, बछड़े की इबादत करने का शौक पैदा हुआ। इन्हें देखकर बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम से कहा कि आप हमारे लिए भी एक ऐसा मामूद बना दें जिसको सामने रखकर हम उसकी इबादत किया करें, ताकि हमारा ध्यान ना बटे, हम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो और फोकस होकर हम इबादत कर सकें। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने इनके मुतालबे को रद्द करते हुए फरमाया कि तुम जाहिल लोग हो, ये लोग जिस काम में पड़े हुए हैं वो सब बर्बाद करने वाले हैं और जो कुछ ये कर रहे हैं वो सब गलत है। आपने ये भी फरमाया कि क्या मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई और माबूद की तलाश करूँ, हालाँकि उसने तुम्हें सारे जहानों वालों पर फजीलत अता फरमाई है। यहां पर यह बात भी नॉलेज में रहे कि हजरत मूसा अलैहि सलाम से यह डिमांड सारे बनी इसराइलों ने नहीं की थी, क्योंकि उनमें हजरत हारून और दूसरे अल्लाह के नेक बंदे भी थे। यह डिमांड उन लोगों की थी जो भी अभी ईमान में मजबूत नहीं थे, कमजोर थे। खैर, मूसा अलैहि सलाम ने इनको डांट दिया, मगर इनकी डिमांड ने सामरी को मालूम हो गया इससे कि बनी इसराइल में फिरौनियों की मोहब्बत से मखलूक परस्ती यानी मखलूक की इबादत करने में दिलचस्पी का एलिमेंट मौजूद है, थोड़ा बहुत है उनके दिल में, और अगर उनको थोड़ा बहुत बहकाया जाए, थोड़ा बहुत इनको भटकाया जाए तो ये आसानी से गुमराह हो जाएंगे। अब इसे ये मौके की तलाश थी कि कब इसे ये मौका मिले और ये बनी इसराइल को गुमराह करे, और आखिरकार इसे वो मौका मिल गया कि जब हज़रत मूसा अलैहि सलाम कुछ टाइम के लिए बनी इसराइल से दूर हुए। क्यों दूर हुए, इसकी तफसील ये है कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने मिस्र में बनी इसराइलियों से वादा फरमाया था कि जब अल्लाह पाक इनके दुश्मन फिरौन को हलाक फरमा देगा तो वो इनके पास अल्लाह की तरफ से एक किताब लाएंगे जिनमें हलाल और हराम का बयान होगा। जब अल्लाह ने फिरौन को हलाक कर दिया तो हज़रत मूसा ने अल्लाह पाक से वो किताब नाजिल करने की रिक्वेस्ट की। इस पर इन्हें हुक्म मिला कि 30 रोज़े रखें। ये ज़ुल्कादा का महीना था। जब हज़रत मूसा रोज़े पूरे कर चुके तो आपको अपने मुंह मुबारक से एक तरह की बू मालूम हुई, स्मेल हुई, जो कॉमनली रोज़े में नाक खाने की वजह से पैदा हो जाती है। इस वजह से आपने मिसवाक कर ली, जिसके बाद फरिश्तों ने आपसे अर्ज़ की, हमें आपके मुँह से बड़ी प्यारी खुशबू आया करती थी, आपने मिसवाक करके इसे ख़त्म कर दिया। अल्लाह पाक ने आपको हुक्म फरमाया कि माह ज़ुल्हिज्जा में 10 और रोज़े रखें और इरशाद फरमाया, मूसा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रोज़ेदार के मुंह की खुशबू मेरे नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। एनीवेज, हजरत मूसा अलैहि सलाम रब ताला से मुनाजात करने और तौरात लेने के लिए अपनी कौम में से 70 लोगों को चुनकर अपने साथ कोहे तूर पर ले गए, और जाने से पहले आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहि सलाम से फरमाया कि तुम मेरी कौम में मेरे नायब रहना और इनकी इसलाह करते रहना। मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल से 30 दिन का वादा फरमाकर कोहे तूर की तरफ रवाना हुए थे, और अब 40 दिन हो चुके थे। जैसा कि मैंने बताया, आपने चूंकि बनी इसराइल से 30 दिन का वादा फरमाया था, इसलिए जैसे ही 30 दिन मुकम्मल हुए तो बनी इसराइलियों में खलबली मचना शुरू हो गई। पहले तो उन्होंने हजरत हारून से पूछा कि हम इस जेवर का क्या करें। ये उस जेवर के बारे में पूछ रहे थे जो उन्होंने किब्तियों से लिए थे अमानत के तौर पर फिरौन के डूबने से पहले। आप अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि इस सारे सोने को एक घड़े में डालकर जलाकर राख कर दो और उसकी राख जमीन में दफन कर दो। हजरत हारून से ये हुक्म मिला जबकि सामरी ने इन लोगों से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी तरह आम इंसान है, वो सिर्फ अपनी जादुई असा की वजह से मौजज़े दिखाते हैं और तुमसे बढ़ गए हैं, इसलिए मेरी बात मानो तो वो सारा सोना मेरे हवाले कर दो, मैं तुम लोगों के लिए इस असे से भी बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ बनाकर दूंगा जिससे तुम लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किताबों में ये भी आया कि उसने बनी इसराइलियों से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं क्योंकि उन्हें 30 दिनों में वापस आ जाना चाहिए था, और अब देखो वो आ ही नहीं है। बनी इसराइली सामरी की इस बातों में आ गए और उन्होंने वो सारा सोना इसके हवाले कर दिया। सामरी ने इससे कीमती पत्थर निकाल लिए और सोना गलाकर उसमें से एक बहुत खूबसूरत बछड़ा बनाया, और कीमती पत्थरों को इसने बछड़े के कान और आँख और पैर वगैरह और दूसरे बॉडी पार्ट्स पर बहुत खूबसूरती से लगाया। जब वो मुकम्मल तौर पर बन गया तो उसने वो बरकत वाली खाक उस बछड़े के मुंह में डाल दी जिससे उसमें आवाज़ और हरकत पैदा हो गई। कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि सामरी ने उसकी नाक में कुछ सुराग बनाए थे जिसमें हवा का गुजर होकर आवाज़ पैदा होकर होती थी, लेकिन सही यह है कि आवाज़ मिट्टी की तासीर से पैदा होती थी क्योंकि रिवायात में आता है कि वो बछड़ा हिलना भी शुरू हो गया था। सामरी ने लोगों से कहा कि देखो इस बछड़े में खुदा आ गया है, माजल्ला मूसा उस खुदा को वहाँ ढूंढ रहे हैं और ये हमारे पास आ गया है। बनी इसराइली इसके बहकावे में आ गए। सामरी ने बछड़े को एक बड़े खैमे में खड़ा किया और उसके आसपास खूबसूरत फर्श बिछाए। बनी इसराइली मर्द औरत वहाँ पर जमा होने लगे और हर कोई इसकी इबादत करने लगा। जब वो बोलता तो उसके सामने सजदे में गिर जाते, जब खामोश होता तो उसका तवाफ करने लग जाते, उसके आगे नाचते कूदते गाने बजाते थे सिवाय हजरत हारून और उनके 12,000 साथियों के, बाकी सारे बनी इसराइली इस शिर्क में लग गए। आज भी मुशरिक लोग अपने बातिल माबूदों के हवाले से शोबदे दिखा दिखा कर अपनी कौम को गुमराही पर लगाए रखते हैं। यही हाल बनी इसराइल का हुआ था कि ये लोग इतने बेवकूफ़ और कम अकल थे कि इतनी बात भी ना समझ सके कि ये बछड़ा ना तो इनसे कोई सवालों जवाब की सूरत में बात कर सकता है, ना ही इन्हें गाइड कर सकता है, तो ये माबूद किस तरह हो सकता है। हालांकि बनी इसराइली इस बात को जानते थे कि रब वो हर चीज़ पर कादिर है, हर बात को जानने वाला है और हिदायत देने वाला है। अब आ जाइए दूसरी तरफ, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। जब हजरत मूसा रब ताला से हम कलाम होने के लिए हाजिर हुए तो आपने तहारत की, पाकीज़ा लिबास पहना और रोज़ा रखकर तूर सीना में हाजिर हुए। अल्लाह पाक ने एक बादल नाजिल फरमाया जिसने पहाड़ को हर तरफ से 12 मील की मितार तक ढक लिया। शयातीन और ज़मीन के जानवर, यहाँ तक के साथ रहने वाले फरिश्ते तक वहाँ से अलग हो गए। आपके लिए आसमान खोल दिया गया और आपने मलाइका को देखा हवा में खड़े हैं। आपने अर्श इलाही को साफ नज़रों से देखा और फिर अल्लाह पाक ने आपसे कलाम फरमाया। इसके बाद वो तजल्ली दिखाने वाला वाक्य हुआ जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को तौरात की तख्तियां अता फरमाई। जिन तख्तियों में तौरात लिखी गई थी वो पेरेडॉट या एमरल्ड की थी। उनकी तादाद 7 या 10 बताई जाती है। हजरत मूसा अलैहि सलाम और इनकी कौम को अपने दीन में हलाल और हराम, अच्छी बुरी चीज़ों के हवाले से जितने भी अहकामात की ज़रूरत थी वो सब तौरात में लिखे हुए थे। मूसा अलैहि सलाम का कौम की तरफ लौटने से पहले हजरत हारून ने लोगों को नसीहत की और वो जिस काम में लग गए थे समझाया कि ये शिर्क है, ऐसा ना करें। आपने फरमाया मेरी कौम इस बछड़े के ज़रिए सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की जा रही है, तुम इसे ना पूजो, और बेशक तुम्हारा रब जो इबादत का मुस्तहिक है वो रहमान अज़्ज़ा वजल है, ना कि ये बछड़ा। तो मेरी पैरवी करो और बछड़े की पूजा छोड़ देने में मेरे हुक्म की इताअत करो। आपकी नसीहत के जवाब में लोगों ने कहा कि हम तो उस वक्त तक बछड़े की पूजा करने पर कायम रहेंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हमारे पास मूसा अलैहिस्सलाम लौट कर ना आ जाए और हम देख लें कि वो भी हमारी तरह इसकी पूजा करते हैं या नहीं, और सामरी ने सच कहा है या नहीं। इस पर हज़रत हारून उनसे अलहदा हो गए और उनके साथ 12,000 वो लोग थे वो भी जुदा हो गए जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो आपने इन लोगों के शोर मचाने और बाजा बजाने की आवाज़ें सुनी जो बछड़े के गिर्द नाच रहे थे। तब आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथ मौजूद 70 लोगों से फरमाया कि ये फितने की आवाज़ है। जब आप अलैहिस्सलाम करीब पहुँचे और हज़रत हारून को देखा तो आपने हज़रत हारून को डांटा और उनसे फरमाया, ए हारून, जब आप इन्हें गुमराह होते देखा था तो आपको किस चीज़ ने मेरे पीछे आने से और मुझे खबर देने से मना किया था? जब इन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी तो आप मेरे पास क्यों नहीं आ गए ताकि आपका इनसे अलग हो जाना भी इनके हक में एक डांट होती? हज़रत हारून ने हज़रत मूसा से कहा कि मुझे ये डर था कि अगर मैं इन्हें छोड़कर आपके पीछे चला गया तो ये ग्रुप्स में डिवाइड होकर एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे और ये देखकर आप कहेंगे कि मैंने बनी इसराइल को तकसीम कर दिया और इनके बारे में आपका हुक्म का इंतज़ार न किया, इस डर से मैं इन्हें छोड़कर आपके पास नहीं आया। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून का उज़र कबूल करके अल्लाह पाक से दुआ की, फिर हज़रत हारून ने भी आप अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी, जिसके बाद आपका गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बछड़े को तोड़ तोड़ कर जलाकर और रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। कुछ पुजारी बनी इसराइलियों को बछड़े से ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि उन्होंने तबर्रुक के लिए दरिया का पानी छुप कर पिया जिसमें ये राख फेंकी गई थी, जिससे इनके होंठ काले पड़ गए और पेट फूल गया और इनकी तौबा भी कबूल न हुई। इसके बाद हज़रत मूसा को हुक्म हुआ कि गाय की पूजा करने वालों को माफ़ी दिलवाने के लिए 70 आदमी लेकर कोहे तूर पर हाजिर हों। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने हर ग्रुप से 6 लोग चुन लिए, क्योंकि बनी इसराइल के 12 ग्रुप थे और जब हर ग्रुप में से 6 आदमी चुने गए तो 2 बढ़ गए। और जब आपने इनसे फरमाया कि मुझे 70 लाने का हुक्म है, 70 आदमी, और तुम 72 हो इसलिए तुम में से 2 आदमी यहीं रह जाएं, तो वो आपस में झगड़ने लगे। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रह जाने वालों को जाने वालों की तरह ही सवाब मिलेगा। ये सुनकर इनमें से 2 आदमी जाने वालों से अलग हो गए, जिनमें से एक हज़रत यूशा भी थे, और कुल 70 आदमी आपके साथ गए। ये 70 लोग उन लोगों में से थे जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें रोज़ा रखने, बदन और कपड़े पाक करने का हुक्म दिया, फिर इनके साथ तूर सीना की तरफ निकले। जब पहाड़ के करीब पहुँचे तो इन्हें एक बादल ने ढांप लिया। आप अलैहिस्सलाम इनके साथ इसमें दाखिल हो गए और फिर जब सब ने सजदा किया फिर कौम ने अल्लाह पाक का कलाम सुना जो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि ये करो और ये ना करो। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के बारे में जो हुक्म दिया वो तौबा के लिए अपनी जान देना था। जब कलाम का सिलसिला ख़त्म होने के बाद बादल उठा लिया गया तो ये लोग हज़रत मूसा से कहने लगे, तौबा में अपनी जानों को कत्ल करने का जो हुक्म हमने सुना है इसकी तस्दीक हम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह पाक को ऐलानिया ना देख लें। उन्होंने ये बात की और देखते ही देखते वहाँ एक ख़तरनाक जलजला आया और वो तमाम के तमाम लोग हलाक हो गए। हज़रत मूसा ने अल्लाह पाक से कुछ गुफ्तगू की और इन लोगों के लिए ज़िंदा हो जाने की दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने इन मुर्दों को दोबारा ज़िंदा फरमा दिया और ये वापस बनी इसराइल के पास लौट गए। जब बनी इसराइल को मालूम हुआ तो इनके लिए तौबा और माफ़ी की सूरत यह है कि जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की वो पूजा करने वालों को कत्ल करेंगे और मुजरिम राज़ी खुशी और सुकून के साथ कत्ल हो जाएँ। तो वो लोग इस पर अब राज़ी हो गए और इस तरह सुबह से शाम तक 70,000 बनी इसराइल कत्ल हुए। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह पाक की बारगाह में इनके लिए माफ़ी मांगी। इस पर वही आई कि जो कत्ल हो चुके वो शहीद हुए और बाकी बख्श दिए गए, यानी कातिल व मक्तूल सब जन्नती हैं। ये तो वो लोग थे जिन्होंने बछड़े को खुदा माना था, लेकिन जिसने ये फितना बनाया था, फितना खड़ा किया था, यानी सामरी, उसका क्या अंजाम हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से फरमाया कि ए सामरी, तूने ऐसा क्यों किया? सामरी ने जवाब दिया कि मैंने देखा कि जो बनी इसराइल के लोगों ने ना देखा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने क्या देखा? इसने कहा कि मैंने हज़रत जिब्रील को देखा और उन्हें पहचान लिया, वो घोड़े पर सवार थे। उस वक्त मेरे दिल में ये बात आई कि मैं इनके घोड़े के कदम के निशान की खाक ले लूँ, तो मैंने वहाँ से एक मिट्टी भर ली, फिर इसे अपने बनाए हुए बछड़े में डाल दिया। मुझे ये काम इतना अच्छा लगा और मैंने अपनी नफसानी ख्वाहिश की वजह से यह किया। किसी और ने मुझे इस काम को करने के लिए नहीं उकसाया था। इस कन्फेशन के बाद अल्लाह के दुश्मन का अंजाम ये हुआ कि सामरी का मुकम्मल बाइकॉट कर दिया गया और लोगों पर इसके साथ मुलाकात करना, बातचीत करना, खरीदो फरोख्त सब हराम कर दिया गया। और अगर इत्तेफाकन कोई इससे टच हो जाता तो वो और छूने वाला दोनों को बहुत तेज़ बुखार हो जाता। वो जंगल में यही शोर मचाता फिरता था कि मुझे कोई ना छुए, मुझे कोई ना छुए, और वो इसी तरह मौत तक वहशियों और दरिंदों के दरमियान ज़िंदगी गुजारता रहा। हज़रत मूसा ने इससे फरमाया कि ये तो तेरी दुनिया की सज़ा है और आखिरत की सज़ा इसके अलावा है। नाज़रीन, वीडियो एंड करने से पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि सामरी का पूरा नाम मूसा सामरी था और हज़रत मूसा का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पाला था और हज़रत मूसा की परवरिश फ़िरौन के घर में हुई थी। मगर खुदा की शान कि फ़िरौन के घर पर परवरिश पाने वाला मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और हज़रत जिब्रील का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके उसने बछड़े की पूजा कराई। इस बारे में किसी अल्लाह के वली ने क्या खूब कहा है कि जब कोई आदमी अजल यानी हमेशा से एक नेक बख्त ना हो, अच्छी फितरत का ना हो, तो उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम होती है। देख लो, मूसा सामरी जो हजरत जिब्रील का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और मूसा अलैहि सलाम जो फिरौन की परवरिश में रहे वो खुदा के रसूल हुए। इसका रीज़न यही है कि मूसा सामरी हमेशा और पैदाइशी बदबख्त था तो हज़रत जिब्रील की तरबियत और परवरिश उसको कुछ नफ़ा ना दे सकी और वो काफिर ही काफिर रहा। और हज़रत मूसा चूँकि हमेशा से नेक बख्त थे इसलिए फिरौन जैसे काफिर की परवरिश से भी इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा।